Happy.
ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 2007। अच्छा, अभी जो बाप दादा ने कहा वह हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, तो कौन सी ड्रिल करनी है आज? एक मिनट के लिए क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करना है। किसी भी चीज को समाप्त करने की विधि क्या है? दृढ़ संकल्प, एक शक्तिशाली संकल्प। सफलता एक संकल्प की दूरी पर है। बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं देखना है। संकल्प कर लिया सो कर लिया। फिर बाप के दिल तख्त नशीन बनना है, विश्व के तख्त नशीन बनना है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। ना कोई आलस, ना कोई अलबेलापन। ऐसा हो या वैसा हो, मुझे तो बाप जैसा बनना ही है। अगर कितना पैदल चलना पड़े तो 6 घंटे भी लग जाए घर से सेंटर आने तक के लिए, आज सुबह की साकार मुरली, तो क्या? तो भी आ जाओ। कितने बजे निकलना पड़ेगा रात को मंजू बहन? 6 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए सेंटर। तो 6 घंटे अरे बाप, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के रखे है और फिर कहते हो समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, घर दूर है। सत्यानाश हो जाएगा ऐसे बच्चों का, तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। यात्राओं में जाते हैं, पैदल जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, धक्के खाते हैं, यहां नहीं आ सकते। ऐसी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई? कल की मुरली से एक एक वर्षन कितने का है? लाखों करोड़ों का है। खजाने पिछाड़ी खजाने बाप तुम पर को देते हैं। आज की मुरली कमाई हो रही है, अविनाशी कमाई। वहां जब कमाई करते हैं तो कितने बजे तक जागते हैं? रात को 1-2 बजे तक जागते हैं। तब झुटका आता है क्या? उबासी अर्थात थकावट की निशानी, उबासी अर्थात आज की मुरली उदासी की निशानी। उबासी अर्थात उदासी की निशानी, उबासी अर्थात थकावट की निशानी, दो अलग अलग जगह पर है। एक लेखक ने एक ऐसे लिखा था, ऐसे का नाम था लेटर टू गार्सिया, लेखक था हुबार्ड, एल्बर्ट हुबार्ड। ये लेटर बहुत प्रसिद्ध है, लेटर टू गार्सिया। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, मैनेजमेंट बड़ी बड़ी फर्म्स, वहां पर ये कहानी सुनाई जाती है एम्प्लॉयज को, वहां के कर्मचारियों को। क्या है इस कहानी में? कहानी में दिखाया है अमेरिका और स्पेनिश का, स्पेनिश वॉर चालू है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको एक लेटर पहुंचाना है। किसको? गार्सिया नाम के एक व्यक्ति को, जो कि कमांडर है आर्मी का, चीफ है, पर वो कहां है पता नहीं। कुबा के पर्वतों में कहीं वो छिपा है, कहीं वो खो गया है, पर उस तक वो खत पहुंचाना बहुत जरूरी है। कौन पहुंचाएगा ये खत? सब कहते हमें पता नहीं, हमें पता नहीं हम कैसे पहुंचाए, वो कहाँ है ये भी तो नहीं पता, कैसे पहुंचाएंगे। पर खत बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति तैयार होता है जिसका नाम होता है रोवन। वो रोवन ये नहीं पूछता है कि वो गार्सिया कहाँ है, वो रोवन ये नहीं पूछता है कि गार्सिया कहाँ रहता है, दिखने में कैसा है, कुछ नहीं पूछता है। वो खत लेता है, स्ट्रैप करता है अपने यहाँ छाती में और अंदर लगाता है और नाव से उस सुनसान टापू में अंदर घुस जाता है और कैसे भी करके वो लेटर पहुंचा कर वापस आ जाता है। कहानी इतनी ही है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी बहाना नहीं देता है, ये नहीं पूछता कैसे करूंगा, कब करूंगा, कहां करूंगा, किस वजह से करूं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं, मेरे पास अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं। सीधा जाता है और कार्य करके वापस आ जाता है। इसे कहते हैं लेटर टू गार्सिया। गार्सिया तक वो लेटर पहुंचा देता है। कंपनियों में ये इसलिए सुनाया जाता है कि बॉस जो भी कहे बस करो, ये मत कहो क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे। तो आज अभी अभी जो शिवरात्रि में मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, व्रत और जागरण। व्रत कौन सा, संपूर्ण पवित्रता का, ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्माचर्य, एक भी विकार ना हो। पहला महत्वपूर्ण है परंतु चारों से प्यार है, वो भी अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात पांचों को छोड़ा है। दूसरा था जागरण। जागरण किससे, कौन सी नींद में सोए हैं, यही नींद है वो, बाकी नींद, बहानेबाजी, आलस और अलबेलापन। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई आलस नहीं, मन की ऐसी अलर्ट अवस्था बाबा को प्रिय है। और बाबा ने कहा एक संकल्प करो और इस स्थिति में स्थित हो जाओ। परंतु जिसकी आदत हो गई है वो हम करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बाजी कौन सी है जो हम खेलते हैं, बहानेबाजी। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, एक है बाप का खजाना, एक है रावण का खजाना, आलस और अलबेलापन है रावण का खजाना। 69 की अव्यक्त मुरली है, सुस्ती का मीठा रूप आलस। ढेर सारी मुरली है आलस और अलबेलेपन के ऊपर। आलस और अलबेलेपन में क्या अंतर है, वैसे तो दोनों समानार्थी रूप में बाबा ने प्रयोग किया है, परंतु आलस स्थूल है, अलबेलापन सूक्ष्म है। आलस शरीर से संबंधित है, अलबेलापन मन से संबंधित है, संकल्पों से। तो हमेशा व्यक्ति आलस को ढूंढता है, अलबेलेपन को ढूंढता है। तीनों अलग अलग शब्द है परंतु जुड़े हुए हैं, तीनों भी एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। जैसे मिलिट्री में वीकेंड की छुट्टी होती है 2 दिन, और 2 दिन के बाद सभी सिपाही सबको 9 बजे रिपोर्ट करना था, पर सब लोग लेट आते 10 बजे, और जो सर्जेंट होता है वो इतना गुस्से में हो जाता है, तिलमिला जाता है, सोचता है एक एक को देखता हूं आज सबके सब देरी से कैसे आए, अब ये लोग क्या कारण बनाते हैं मुझे देखना है। तो सोचता है सबको एक साथ नहीं पूछूंगा, एक एक करके पूछूंगा। पहले को बुलाते हैं तो पूछते तुम लेट क्यों हो गए आज, वो कहता है क्या करूं, मेरा एक कारण ऐसा रहा कि मैं तो बहुत जल्दी निकला था पर बस मिस हो गई, और फिर मैं वहां खड़ा था, और फिर क्या करूं, तो फिर देखा एक घोड़ा और एक बग्गी आई और बूढ़ा व्यक्ति उसमें था, और उसने मुझे कहा कि क्या मेरी बग्गी में बैठोगे, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे रहम भी आ गया और मुझे पहुंचना भी था, पर आप ही सोच सकते हो मैं बग्गी में आया तो लेट तो होगा ना, मैंने, हाँ तुम्हारा रीजन तो सही है, यू आर राइट, जाओ दूसरे को बुलाते। मैंने, तुम लेट क्यों हुए? वो कहते थे मैं क्या करूं, मैं जैसे ही निकला बस पकड़ने गया था, बस मिस हो गई। फिर मैं वहां खड़ा था और फिर वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घोड़ा और बग्घी लेके आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी बग्घी बग्घी में बैठ जाओ। तो मैं बैठा और आप ही जान सकते हो घोड़ा बग्घी में आऊंगा तो लेट तो होगा ना। हाँ यू आर राइट, जाओ तीसरे को बुलाते, तुम बताओ तुम लेट क्यों हुए? वो कहते मैं तो जल्दी ही निकला था पर मेरी बस मिस हो गई, और बस मिस हो गई तो बाद में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़ा बग्घी लेकर वहां आया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसलिए मुझे लेट हो गया। सर्जेंट कहते हैं जाओ। ऐसा करते करते जितने सिपाही थे सबने ये एक ही कारण दिया, फिर अंतिम लास्ट वाला आया। तब तक तो ये जो था एकदम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसको कहते अच्छा तो तुम्हारी भी बस तो मिस हुई होगी? वो कहते हाँ मेरी भी बस मिस हुई। तो कहते तुम भी फिर सड़क पर आए होंगे? तो बोलते हाँ मैं भी सड़क पर आया। फिर कहते तुमको भी वो बग्घी और घोड़ा मिला होगा? वो कहता नहीं मैं तो अपनी मर्सिडीज में आया। तो तुमको लेट क्यों हुआ? फिर वो कहता सड़क पर इतनी सारे घोड़े और इतनी बग्घियां थी। पूरा सड़क घोड़े और बग्घियों से भरा पड़ा था, इसलिए तो लेट हो गया। ब्राह्मणों के पास भी बहुत बहाने हैं। ऐसे 10 कैटेगरीज हम बनाएंगे बहानों की। सबसे पहला बहाना समय, समय का बहाना। क्या बहाना देते हैं जो आज की मुरली में, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या क्या करें, समय कम पड़ रहा है, हम क्या क्या करें। नुमा शाम के योग में दिखे नहीं, हम बिजी थे। आज अमृत वेला लेट दिखे, हम लेट सोए थे, नींद पूरी नहीं हुई थी, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमारी सेवा इतनी है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। तुम्हारा अच्छा है 9 से 5 और जाओ घर, हम तो 24 घंटा सेवा में है। समय के बहाने, फुर्सत नहीं है, समय कम है। योगी बनने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। यह हमने रचना की है बहानों की यहां पर, जिसको करना है वो कैसे भी करके करेगा, जिसको करना ही नहीं है फिर बस मिस हो गई, फिर रास्ते पर खड़ा था, फिर बग्गी में बैठ के आया इसलिए लेट हो गया। बहानों पर बहाने, बहानों पर बहाने। तो समय का कोई भी बहाना नहीं दे सकता, चाहे कोई कितना भी व्यस्त हो। ये नहीं कह सकता कि मुझे मुरली सुनने पढ़ने के लिए समय नहीं था, ये नहीं कह सकता कि मुरली चिंतन के लिए मुझे समय नहीं था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बाप ने खोली है आज की मुरली में और तुम कहते हो कि आ नहीं सकते, सत्यानाश हो जाएगा। सेवा नहीं कर सकते, कल का वरदान क्या था? सेवा क्या है तुम्हारा ब्राह्मण जीवन का? जिंदा रखने का साधन है, कोई नहीं कर रहे हो। निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, सब हद की कामनाओं से परे सेवा, स्वरूप स्थिति में स्थित होकर, मधुर बोल के स्वरूप में स्थित होकर करने वाली सेवा, मन मना भव की स्थिति में की हुई सेवा ही ईश्वरीय सेवा है, रूहानी सेवा है। इसके लिए सेवा के लिए बहाने, योग के लिए बहाने, ज्ञान चिंतन के लिए बहाने, मुरली नहीं पड़ी इसके लिए बहाने, मुरली में क्या था वो याद नहीं है। बहानों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये तो एक विभाजन है एक प्रकार का, और भी प्रकार के विभाजन है। हमारी बुद्धि कम है, हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, हमको याद नहीं रहता है। तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, हम बूढ़े हो गए।
हमने करना था वो करेंगे अब हम क्या करें।
समय का कोई भी बहाना नहीं दे सकता है, समय सबके पास सेम है। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी उतना ही समय है जितना हमारे पास है, वो उसमें क्या क्या कर रहा है और हम उसमें क्या क्या कर रहे हैं, कितना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। अगर हम अपने आप को देखें, एक दिन की दिनचर्या को, उसमें कितने टाइम वेस्टर्स हैं जो आते हैं समय को चुरा कर भाग जाते हैं, भाग जाते हैं समय को चुरा कर, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय चला गया। अंग्रेजी के एक व्याकरण विशेषज्ञ ने लिखा है, ग्रामेरियन, ग्रामेरियन होते हैं ना, व्याकरण पर जो विद्वत्ता है उनकी, वो लिखता है कि मैं देखता हूं लोग कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, चाय की टपरी पर बैठ के चाय पी रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं देखता हूं आपस में लोग कैसी गपशप कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अगर ये सारा समय वो अंग्रेजी के व्याकरण के अध्ययन में लगा देते तो शायद दे वुड हैव बिकम परफेक्ट स्पीकर एंड राइटर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हो सकता था कि वो अपने जीवन में अच्छे लेखक बन जाते, पर वो क्या करते हैं, समय व्यर्थ गवाते हैं। दुख होता है एक व्याकरण विशेषज्ञ को यदि कोई व्याकरण में त्रुटियां करता है बोलते बोलते, तो आत्महत्या करने की इच्छा होती है उसको, सुन नहीं पाता है वो अशुद्ध भाषा, कब तक बोलते रहेंगे कि हिंदी हमें नहीं आती, हिंदी हमें नहीं आती, हिंदी हमारी भाषा नहीं है, शिव बाबा नहीं बोलती ब्रह्मा बोलती है, कब तक बोलते रहेंगे ऐसा। कब तक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को इधर उधर करते रहेंगे।
बाइक चलाने आती है आपको खुशी देंगे।
सबसे पहला बहाना है समय, तो समय का कोई बहाना नहीं, देना ही नहीं है, करके दिखा देना है, चाहे जागना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, व्यक्तिगत पर्सनल टाइम जो है वो भी लगाना पड़े वो भी लगा दो, पर कोई बहाना। दूसरा बहाना है स्वास्थ्य का। ब्राह्मणों का प्रसिद्ध महावाक्य कौन सा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ ही नहीं देता है। क्या कहते हैं ब्राह्मण, शरीर साथ नहीं देता, कमजोरी सी रहती है, सुस्ती सी लगी रहती है, ऐसा लगता है जाके बस आराम करो। कईयों की दिनचर्या ऐसी है, उठे अमृत वेला किया सो गए, उठे मुरली सुनी नाश्ता किया सो गए, उठे दोपहर का भोजन किया फिर सो गए, फिर उठे फिर नुमा शाम का योग किया भोजन किया फिर सो गए, और बीच बीच में थोड़ी बहुत अगर टाइम मिला तो सेवा, सोते रहते बस, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। स्वास्थ्य, और कारण क्या है, थकान, शरीर में थकान है, कोई तो बीमारी है और शरीर के कारण देते रहते। चलो हो भी तो करो ना ठीक, जाओ उसको ट्रीट करो, कारण ढूंढो क्यों कमजोरी है और ठीक करो उसको। तीसरा कारण है बंधन, हमारे बंधन है, हमारे कर्म बंधन है, कर्मों का हिसाब है, हम बंधन में है इसलिए नहीं कर पाते। कब तक चिल्लाते रहेंगे कि मैं बांधे ली हूं बांधे ली हूं बांधे ली हूं। बंधन, सबसे बड़े बंधन कौन से, संडे की मुरली किस पर थी, मन के बंधन, व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, आलस अलबेलेपन के संकल्प। क्या होता है उससे, थकावट, क्या होता है उससे, दिल शिकस्त, क्या होता है उससे, अभिमान, क्या होता है उससे, दूसरों पर दोषारोपण, क्या होता है उससे, पश्चाताप, चाहते तो नहीं थे ये हमें पता है ठीक नहीं है पर कर नहीं सकते, डायग्नोसिस हो चुका है ये बीमारी है पर व्यक्ति हैंडल नहीं कर पा रहा है खुद से, शरीर की बीमारी की बात नहीं कर रहे मन की बीमारी की, पता चल गया ये काम है, पर हैंडल नहीं कर पा रहा है कुमार, मदद लो। पता चल गया है ये क्रोध है, पर खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, मदद लो। विक्षिप्तता है मन की, कभी कोई एक डिल्यूजन, कोई मन में भ्रम पाल रखा है और उसी में व्यक्ति जीता है जीवन पर्यंत। पता चल रहा है ये सत्य नहीं है, परंतु उसे सत्य लग रहा है, मदद लो। बंधन, संडे की मुरली, और बंधन वाली आत्माओं की चार निशानियां, परवश, अल्पकालीन सुख, कंट्रोलिंग मनसा की कंट्रोलिंग पावर नहीं, और चौथा, चौथा महसूसता की शक्ति खत्म। क्या करेगी ऐसी आत्माएं? हवाई किले बनाएगी, तोड़ेगी, दीवार खड़े करेगी, तोड़ेगी, मूर्तियों को सजाएगी और डुबोएगी, चौथा ताला लगाएगी और खोलेगी। बस इसी में समय जा रहा है, व्यर्थ में बिजी है। बंधन के कोई कारण नहीं दे सकता, मेरा बंधन है, मेरा बंधन है। सबसे बड़ा बंधन तो है मन का, कुमारियों से मुलाकात, नौकरी करने वाली जो कुमारियां कहती है उनका मन का बंधन है, तो वो हुआ अटकना, लटकना, एक पाव इधर एक पाव उधर। और वास्तविक बंधन तो मन की ही है, हमने मन में बंधन निर्माण किए है। मन के बंधन बाबा ने कहा सूक्ष्म है, पतले है, होशियार है। जो बंध जाता है उसे भी नहीं पता चलता है कि मैं बंध गया हूं। नशे जैसा है, नाले में अनुभव होता है, महल में है कुछ नहीं, अनुभव होता है सब कुछ है, ये बंधन है। बंधनों के बहाने नहीं दिए जा सकते, क्योंकि बंधन सारे यहां है। मेंटल ब्लॉकेजेस, यहां के सर्किट को ठीक करो, थोड़ा यहां फ्यूज उड़ा हुआ है। चौथा है बोर्डम, हमें बोर होता है। क्या बोर होता है? वही 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 ज्ञान, वही 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 योग, वही वही सोमवार को क्या रहता है नाश्ते में, पोहा, ट्यूसडे को वही 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 भोग, वही 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 सब कुछ। वो भोजन भी बोर, वो दिनचर्या भी बोर, वो डिपार्टमेंट और वही सारे चेहरे, वही बोर, वही योग, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बोर हो गया, ब्राह्मण जीवन से ही बोर हो गए। वही दिनचर्या, वही उठना, वही अमृत वेला, वही मुरली, बाप आए हैं, तुम्हें पतित से पावन बनना है, काम महाशत्रु है, दिव्य गुण धारण करने, दूसरों की सेवा करनी है, फूल जैसा बनना है, बाप समान बनना है, फॉलो फादर, चाट दे के सोना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। इतना सुना है, इतना सुना है कि बस अब कोई असर ही नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, लिखते समय कोई चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये विषय वैतरणी नदी है आज की मुरली में, यहां दुख ही दुख है, दुखधाम है यहां। ये वैश्याल है, पर कोई तो बच्चे समझते नहीं है वैश्याल, शादी बर्बादी लिख रहे हैं और प्लानिंग भी बना रहे चतुर्भुज बनने का, लिखते लिखते असर ही नहीं है शब्दों का। क्यों हो गया ऐसा? मुरली का प्रभाव क्यों कम हो गया है? क्योंकि यहां पे बोर्डम आ गया है और इसको क्या कर देते, बहाना बनाते, फिर ये हो रहा है इसलिए वैसा कर रहे, इसलिए सोते रहते कोई कोई, तो क्या करे, वही वही सेवा, वही डिपार्टमेंट इतने सालों से, कोई नवीनता ही नहीं है। बोर्डम है क्योंकि नवीनता खो गई है। अब नवीनता लाओ, ज्ञान में, योग में, तपस्या में, धारणा में, हर चीज में नवीनता चाहिए, तब तक ये काम नहीं होगा। नया नया सोचो, मुरलियों में आता है ना झाड़, नई नई पॉइंट सोचो, दर्पण 84 जन्म पत्रिका दर्पण, नए टॉपिक्स निकालो। कल की मुरली में था पॉइंट्स अर्थात टॉपिक्स, पॉइंट्स अर्थात टॉपिक्स, टॉपिक्स निकालो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, आपस में चर्चा करो, तब कहीं ये बोर्डम जाएगा, नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन अर्थात वो कुछ भी ठीक नहीं लगता है इसमें, सब कुछ सुना हुआ है, किसको सुने। चिंतन करो, क्या चिंतन करो, जिसको चिंतन करना था करके तो रखा है सबने चिंतन, अब टॉपिक्स ही नहीं है हमारे पास, कहां से लाए टॉपिक, सारों पर तो चिंतन कर रखा है लोगों ने, अभी एक्स्ट्रा क्या करना है, क्या किताब लिखे, इतनी किताबें क्या कम है धरती पर बोझ। बोर्डम, उसके बाद में पांचवा असमर्थता, इनएबिलिटी, हमसे होता नहीं है ये, हम नहीं कर सकते ये, हमसे नहीं होता ये, हमारी कुवत क्षमता नहीं है, हम नहीं कर सकते ये। काबिलियत, क्यों क्यों नहीं कर सकते, कभी कोशिश की, हम कर ही नहीं सकते, बोल रहे ना, हमने कभी किया नहीं है, हमको आदत ही नहीं है माइक पर बोलने की, हमको डर लगता है, हमको पता है ना, तुम क्या बता रहे हो, हमको पता है, हमको पहले ही पता है हम नहीं कर सकते। हीन भावना है खुद के प्रति, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाई, FLY, फर्स्ट लव योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपने से प्यार ही नहीं है, अपने पर रहम करो, फर्स्ट लव योर सेल्फ, फ्लाई, तब फ्लाई कर सकेंगे। तो अक्षमता, ये बहाने देते हम नहीं कर सकते, अरे यू डू इट बाय डूइंग, अंग्रेजी में कहावत है तुम करते कैसे हो, करने से, जो चीज नहीं आती है वही करो, करके देखो, अपने आप सीखोगे, गिरोगे फिर सीखोगे, जिस चीज से डर लगता है उसको क्या करना है, वही करना है जाके। मुंबई का डर लगता है मुंबई में जाओ, लोकल ट्रेन का डर लगता है लोकल ट्रेन में बैठो, धक्का बुक्की का डर लगता है उसी ट्रेन में जाओ, जहां पे डर लगता है वही चीज करो, देखो उसको आंखों के आंख में डाल कर देखो ऐसे, तो वो भाग जाएगी चीज, वो तुमसे डरने लगेगी, नहीं तो हर मन में एक डर है, मृत्यु का डर है, मेरे अपने मर जाएंगे तो, देखो मरे हुए लाशें बिछी हुई है, मेरा घर 40 साल लगे बनाने में, देखो सब कुछ भूकंप के नीचे धस गया है, खत्म, खलास। कोई नहीं बचेगा, लाशें बिछी है, लाशों पर मैं चल रहा हूं, मैं अंतिम बचा हूं धरती पर, ये धरती पर सब चले गए परम धाम, अब मेरी बारी है, पर उसके पहले ये नजारा देखना है, लाशें ही लाशें बिछी है। 84 के दंगे जब हुए थे कैसे थी, लाशें ही लाशें थी सब जगह, जिससे डर लगता है वही देखना है, ये व्यक्ति मुझे जिसमें मोह है वो छूट ना जाए, देखो मर चुका है, मोह खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, अक्षमता। उसके बाद है हेल्पलेसनेस, बेबसी, बेबसी अर्थात लाचारी, हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, असंभव हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। असंभव संभव कर देंगे, वो आग वो नशा हम में है, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम नकार दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी का तुम गुहार दो, यासमा में जाके तुम दहाड़ दो। तो बेबसी के कोई भी बहाने नहीं देने, बस करके दिखा देना है। उसके बाद में अगला है भाग्य, मेरे भाग्य में ही नहीं है, बाबा ने कहा है भाग्य विधाता तुम्हारे साथ है और तुम भाग्य की बातें करते हो, नसीब किस्मत, ब्राह्मण भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, नसीब किस्मत भाग्य, मेरे भाग्य में ही नहीं है, इसके भाग्य में है। इसको सब मिलते रहता है, हमको कुछ नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद अगला है ड्रामा। ड्रामा बना बनाया, ड्रामा में ही नहीं है, ड्रामा का मिसयूज है ये। सबसे ज्यादा शब्द जो मिसयूज हुआ है यज्ञ में वो कौन सा है? ड्रामा। ड्रामा कहने का अधिकार उनको है जो आत्माभिमानी है, और ड्रामा शब्द केवल जो बीत गया है उसके लिए है, वर्तमान और भविष्य के लिए नहीं। इसके लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग करने से पहले बहुत सोच समझ के, जो हो चुका जिसका अब कुछ नहीं किया जा सकता वो ड्रामा है, और हमारा ड्रामा हम खुद निर्माण करते हैं। एक छोटा ड्रामा, एक बड़ा ड्रामा है। बड़ा ड्रामा फिक्स है, पर छोटा ड्रामा हमारे अपने हाथ में। आज का ड्रामा मेरे हाथ में, मैं डिसाइड करूंगा ड्रामा में क्या होना है। हम डिसाइड करेंगे कि ड्रामा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम ड्रामा के निर्माता है, हम ड्रामा के रचयिता है, हम ड्रामा के डायरेक्टर हम है। ड्रामा हमारे अनुसार चलता है। ड्रामा कहेगा कि जैसा मेरा मालिक अनुसार, हम कहते हैं ना ड्रामा अनुसार, ड्रामा कहे इनके अनुसार मैं चलता हूं। तो हमारे ड्रामा के हम निर्माता है। आई एम द मास्टर ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। इस नाव का मालिक मैं हूं इस जीवन के। तो ये भी एक बहाना बनाते हैं। अगला और कौन सा बहाना है? वो शरीर में आ गया, स्वास्थ्य में, बीमारी, पेट दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, फ्रैक्चर, और टाल मटोल करना। आज का नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं हम रहेंगे कि नहीं कल तक, इसलिए जो करना है अभी के अभी कर देना है। और भक्ति मार्ग में कहा जाता है जब भी शुभ संकल्प आए उसको तुरंत कर देना है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है, तुरंत बदल देता है। अभी अभी विचार आया दान करूं, एक घंटे के बाद बदल गया, पूरा बदल गया, इच्छा ही नहीं है अब दान करने की। ये एक अगला कारण है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरी जिम्मेदारियां बहुत है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। योग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देखनी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज महत्वपूर्ण है, कर्तव्य महत्वपूर्ण है, या कहो सेवा। सेवा का बहाना देते हैं, ज्ञान योग में सेवा का बहाना और सेवा में ज्ञान योग का बहाना, योग में ज्ञान का बहाना और ज्ञान में योग का बहाना। मुरली क्यों नहीं पढ़ी? योग में थे, योग में क्यों नहीं गए? चिंतन चालू था। योग में आजकल दिखते नहीं, चिंतन करना होता है मुरली का। बाबा ने कहा है 3 बार मुरली पढ़ो, होमवर्क मिला हुआ है, टॉपिक के प्रिपरेशन चालू है, इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोलना है। सेवा में क्यों नहीं थे? योग में तपस्या कर रहे थे। अब हम कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगे, हमारी तपस्या चालू है। क्लास में दिखते नहीं आजकल, योग एकांत में साइलेंस। ब्राह्मण जो बहाने देते हैं वो योग युक्त होते हैं, ज्ञान युक्त होते हैं, युक्ति युक्त होते हैं, राज युक्त होते हैं, सेवा युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, हाथ ही नहीं लगा सकते। अपने आप को मर्यादा युक्त बहानों से आच्छादित कर देते हैं तो कौन टच करेगा, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके बाद में है कंप्लेंट्स, शिकायत, शिकायत का भंडार है, पिटारा है। उसको पूछो योग क्यों नहीं, तो इतनी शिकायतें चालू कर देते कि सामने वाले को लगता है गलती हो गई, पूछकर पूछना ही नहीं चाहिए था, क्यों पूछा इसको। ये एक कैटेगरी है। उसके बाद में एक दूसरी कैटेगरी हो सकती बहानों की, ज्ञान में बहाने, योग में बहाने, धारणा में बहाने, सेवा में बहाने, एक ये। फिर हो सकती है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बहाने। शारीरिक बहाने में सामाजिक बहाने बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें इतनी सारी कैटेगरीज है। एक तो जैसे शरीर में बुढ़ापा, शरीर साथ नहीं देता। बुद्धि में, हमारी बुद्धि कम है, हमको बोलने नहीं आता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमने कभी बोला नहीं है, हम कम पढ़े लिखे, हमको आता नहीं लिखना पढ़ना। बोलते तो कोई सुनता नहीं है, हमारे पास अनुभव कम है, हम अनुभव ही नहीं है, इसलिए हम कैसे करें ये सेवा, हमने कभी की नहीं है ना, की नहीं है इसलिए तो करो, जो किया नहीं है वही करना है। किस लिए? क्योंकि हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी तो शुरुआत की ही होगी ना, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी, बड़ा से बड़ा डॉक्टर, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, बड़ा से बड़ा योगी, कभी तो एक दिन होगा उसके जीवन में जो आज सबको ट्रेन करता है, उसने खुद भी तो किसी से ट्रेनिंग ली होगी। बड़ा से बड़ा संगीतकार, उसके जीवन में भी तो पहला दिन आया होगा जिस दिन वो सीखा होगा, पहला से पहला दिन जिस दिन वो कार सीखा होगा, गाड़ी सीखा होगा, साइकिल चलाई होगी, एक दिन तो होगा ना हर एक के जीवन में जब उसने शुरुआत की होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कभी किया नहीं, कभी किया नहीं तो करो, अभी करो और सीखो। उसके बाद में आध्यात्मिक कारण, बाबा ही नहीं चाहते, अब इसमें कौन क्या बोल सकता है। बाबा नहीं चाहते कि मैं ये करूं, मुझे टचिंग हुई है सुबह सुबह। पॉलिटिक्स बहुत है या राजनीति है बहुत, इसलिए हम कर नहीं पाते, सब टांग खींचते रहते हैं। अभी ऐसे कारण देने के बाद सामने वाला क्या बोलेगा। बाप क्या कहेंगे, यह बच्चा तो लायक ही नहीं है। बाप ऊंच उठाते या अपनी अपना सत्यानाश करते, कोई बहाना नहीं देना है। अपने मन में हमने ही जो बहाने दिए हैं, हर एक व्यक्ति ने बहाने दिए हैं, कौन कौन से बहाने दिए, खुद ही एक अपनी लिस्ट बनानी है, और जो संभावित बहाने हम दे सकते हैं उसकी भी लिस्ट बनानी है। फ्यूचर में जो हमने, जैसे कहीं पर भी हम लेट पहुंचते हैं तो मन में मटेरियल तैयार करते करते पहुंचते हैं कि पूछेंगे तो क्या बताएंगे, सेफ्टी के लिए पहले से ही। कोई भी, चाहे लेट आने का हो या कोई भी हो, शायद अंदर एक डर है, एक डर भी एक कारण है बहाने का। व्यक्ति बहाने क्यों बनाता है, अंदर भय है इसलिए बहाने बनाता है, वो बहाने बनाना ही चाहता पर डर है उसको अंदर से, इसीलिए। या तो मोह है तो भी बहाने बनाता है, गहरा मोह, गहरा डर, गहरी असुरक्षा, या फिर गहरा विकार, जबरदस्त विकार की खींच हो रही है अंदर ही अंदर। आत्माभिमानी स्थिति में कोई बहाने नहीं है, बहाना बनाना यह देहभान का लक्षण है। बुद्धि भटक रही है मित्र संबंधियों में, आज कहा ना टीचर समझ जाती है, उबासी आती है तो जरूर घर परिवार वाले इसको याद आ रहे होंगे, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए बहाने बना रहे। छोटा बच्चा क्यों बहाना बनाता है पढ़ाई का, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट है टीवी देखने में, कार्टून देखने में, मैच देखने में, उसमें कोई बहाने नहीं बनाता है। हाँ, स्कूल में उसको जाते समय पेट में दर्द है, बारिश आ जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है, दंगे वगैरह होते हैं तो उसको खुशी होती है, क्यों? स्कूल बंद, बहाने बनाता है या डर, किसी को पानी से डर लगता है। महाराष्ट्र में एक लेखक है साने गुरुजी, उसकी एक किताब है श्याम ची आई, उसमें दिखाया है श्याम जो है बड़ा नटखट है, उसको पानी से बहुत डर लगता है, वो तैरना नहीं चाहता है। उसके पिताजी को कारावास में है, स्वतंत्रता सेनानी है, माँ ही उसकी सारी ट्रेनिंग करती है, और वो चुप के जाके बैठ जाता है ऊपर, और वो जो दोस्त है वो माँ को जाके बताते हैं कि वो छुपा हुआ है, वो कहते जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, वो ना 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 कहते रहता, पकड़ के लेके आते हैं उसको पानी में फेंकते हैं। और जब पिताजी कारागार से छूट के आते हैं तो वो पहली कंप्लेंट ये करता है कि ये देखो इसने ऐसे किया मेरे साथ, माँ ने। पिताजी कहते हैं कि मैं ये सुन सकता हूं कि लोग अगर कहे कि आपका श्याम बुद्धिहीन है, मूर्ख है, तो मैं ये सुन सकता हूं, पर वो ये कहे कि ये कायर है, ये मैं नहीं सुन सकता। ये उसके पिताजी श्याम से कहते हैं, ये पूरा वर्णन उन्होंने उस किताब में लिखा है। तो भय, कायरता, ये भी बहाने बनाने में मजबूर करती है व्यक्ति को, तो कोई कहानी बहाने नहीं। तो आज की ड्रिल फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, क्या कहा बाबा ने, 15 फरवरी 2007 की मुरली है। अच्छा, अभी जो बाप दादा ने कहा वह हरेक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस, अलवेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। ये सब मन में हो रहा है बहाने, इस मन को ही यहां काम करना है बस, बिलीफ सिस्टम पर। अभी तक हमने ये मान्यता रखी, इस मान्यता को यहां बदल देना है, सब चेंज होगा। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल से तख्तनशीन बनना ही है, बाप के तख्तनशीन, द्विश्व के तख्तनशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप से सभी बैठो। अच्छा, ओम शांति।
अच्छा भी। This.